नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश में होगी। बैठक में बुनियादी ढांचे में निवेश की दिशा में अभिनव तरीकों व अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में ये जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा, इस बैठक में अन्य प्राथमिकताओं के साथ साथ भविष्य के शहरों के वित्त पोषण, समावेशी, लचीलेपन और टिकाऊपन पर चर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता है। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 63 प्रतिनिधि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा को आगे बढ़ाने और मार्च सन 2023 में विशाखापत्तनम में आयोजित दूसरी IWG बैठक के दौरान हुई चर्चाओं की आगे की कार्यवाही के लिए बैठक में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, भारत की अध्यक्षता के तहत G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 26 से 28 जून सन 2023 तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में होने जा रही है। बोइंग के CEO डेविड एल कैलहॉर्न ने कहा कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करती है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि कंपनी देश के वाणिज्यिक विमानन बाजार के तेजी से विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैलहॉर्न ने 23 जून को वॉशिंगटन DC में मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने भारत के विमानन क्षेत्र में बोइंग की व्यापक उपस्थिति पर चर्चा की, जिसमें विमानों का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल शामिल है। प्रधानमंत्री ने बोइंग को भारत में अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। कैलहॉर्न ने रविवार को कहा, बोइंग को भारत के वाणिज्यिक विमानन बाजार के तेजी से विस्तार और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर गर्व है। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करते हैं। भारत में 5,000 से अधिक लोग बोइंग टीम में नवोन्मेषी काम करके उच्च गुणवत्ता वाले करियर को अपना रहे हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने सोमवार को भारत की GDP वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान बरकरार रखा। रेटिंग एजेंसी ने साथ ही कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक होगी। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के वृद्धि अनुमानों को अपरिवर्तित रखा गया है। पिछले वृद्धि अनुमान मार्च में घोषित किए गए थे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने एशिया प्रशांत के लिए अपनी तिमाही आर्थिक समीक्षा में कहा, हमारा अनुमान है कि भारत, वियतनाम और फिलीपींस की वृद्धि दर लगभग 6% रहेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री लुइस क्विज ने कहा, मध्यम अवधि के लिए वृद्धि अनुमान अपेक्षाकृत ठोस बना हुआ है। एशिया की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं सन 2026 तक हमारे वैश्विक वृद्धि परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई हैं। S&P ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रा स्फीति 6.7% से घटकर 5% रहने का अनुमान है और RBI अगले साल की शुरुआत में ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सामान्य मॉनसून और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चलते मुद्रास्फीति नरम पड़ेगी। S&P ने सन 2023 के लिए चीन की वृद्धि दर का अनुमान 5.5% से घटाकर 5.2% कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस संबंध में पिछले साल राज्य में हुए निवेशक सम्मेलन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहां रिलायंस समूह की फर्म एडवर्ब के 200 करोड़ रुपए के रोबोट विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को पहली बार सभी 75 जिलों के निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं और सबसे ज्यादा प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर जिला के लिए आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, दूसरा वैश्विक निवेशक सम्मेलन लखनऊ में सन 2023 में आयोजित किया गया था। इस दौरान हमने जिन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं उनसे 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, सुरक्षा के वातावरण आदि से निवेश आता है और ये सब अब प्रदेश में दिखता है। अडानी समूह ने कारोबार में मजबूत वृद्धि के साथ कर पूर्व लाभ में 20% की सालाना वृद्धि के साथ 2-3 साल में EBITDA को बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य किया है। कंपनी ने एक टिप्पणी में ये बात कही। अडानी समूह ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की शोध रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों का विश्वास वापस जीतने के लिए इसी महीने कुल 2.65 अरब डॉलर का ऋण समय से पहले चुकाया। अडानी समूह अब हवाई अड्डों, सीमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पैनल, परिवहन और रसद, बिजली और पारेषण जैसे क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि देख रहा है। कंपनी ने कहा कि समूह के कई नए बुनियादी ढांचे के निवेश से भी आने वाले वर्षों में लाभ मिलने लगेगा। समूह ने एक बयान में कहा कि उसे आगामी वर्षों में एबिटडा 20% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। बीते वित्त वर्ष सन 2022-23 में ज्यादातर बड़े राज्य पूंजीगत व्यय के अपने लक्ष्य से बड़े अंतर से पिछड़ गए। एक विश्लेषण के अनुसार सन 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय 7.4 लाख करोड़ रुपए आंका गया था, लेकिन वास्तव में इसके मुकाबले सिर्फ 76.2% या 5.71 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हो सके। बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों की ओर से कराए गए विश्लेषण के अनुसार सिर्फ 4 राज्यों कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार का पूंजीगत व्यय उनके लक्ष्यों से ज्यादा रहा। इसके अलावा झारखंड और मध्य प्रदेश का पूंजीगत व्यय लक्ष्य के मुकाबले 98.98% रहा। देश के 11 राज्यों ने 80% लक्ष्य हासिल कर बेहतर प्रदर्शन किया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।